आस्तिक और अरुणिमा के घर वापस आए 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों में आस्तिक मुश्किल से ही घर आता था। वो सिर्फ 2 घंटे के लिए फ्रेश होने या किसी ज़रूरी फाइल के लिए ही घर आता था। उसे यहाँ का काम जल्द से जल्द निपटाकर मुंबई वापस जाना था, क्योंकि वहाँ उसका सारा बिजनेस बुरी तरह से खराब हो रहा था। इसके अलावा उसने मल्होत्रा के उन आदमियों को भी जान से मार दिया था जिन्होंने जंगल में अरुणिमा और आस्तिक पर हमला किया था। मल्होत्रा तब तक देश से बाहर जा चुका था, लेकिन आस्तिक अभी भी उसकी तलाश में था। अरुणिमा जब से घर वापस आई थी तब से ही आस्तिक से बात करना चाहती थी। उसे आस्तिक के साथ गांव में जो हुआ था उसके बारे में बात करनी थी। वो दिन अरुणिमा के लिए बहुत खूबसूरत था, क्योंकि उस दिन आस्तिक ने उसे नफरत नहीं की थी, उसे घृणा या तिरस्कार नहीं दिया था, बल्कि वो उसके साथ सामान्य रूप से रह रहा था। अरुणिमा यही जीवन चाहती थी। उसे आस्तिक से कुछ भी नहीं चाहिए था, बस वो उसे जैसे है वैसे ही रहने दे। लेकिन आस्तिक घर पर ठीक से समय नहीं बिता रहा था। 2 दिनों से ना तो वो लंच के लिए आता था, ना डिनर के लिए, और ना ही रात में सोने के लिए। अगर आता भी तो किसी ज़रूरी फाइल के लिए सीधे स्टडी रूम में जाता, फाइल उठाता और चला जाता, या फिर सिर्फ फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जाता, शावर लेता, कपड़े बदलता और फिर निकल जाता। इन 2 दिनों में उसने सिर्फ एक बार ही अरुणिमा को देखा था, लेकिन इससे पहले कि अरुणिमा उसके पास आती वो तेज़ी से वहाँ से निकल जाता। अरुणिमा परेशानी से अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और आस्तिक को याद कर रही थी। दरअसल उसे आस्तिक से बात करनी थी और उसे वो भी बताना था जो गांव में दादी ने उसे बताया था। फ्लैशबैक। दादी चूल्हे के पास रोटियां बना रही थीं और अरुणिमा ने अभी अभी एक पपीता खाने के लिए उठाया था। जब दादी ने उसे पपीता खाने से रोका और कहा, गर्भवती औरतें पपीता नहीं खाती, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अरुणिमा चौंक गई थी। उसने हैरानी से पूछा, दादी आपको कैसे पता कि मैं गर्भवती हूँ? दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस गांव में दाई हूँ बेटी, किसी भी औरत को देखकर बता सकती हूँ कि वो उम्मीद से है या नहीं। दादी चूहे के पास खाना बना रही थी और अरुणिमा रोटियों की लोई गोल करने में उनकी मदद कर रही थी, लेकिन दादी की नज़र बराबर अरुणिमा पर बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटी, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तुम्हें पता है गर्भवती महिलाओं को हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि तुम कई परेशानियां अपने अंदर दबाए बैठी हो। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। अरुणिमा का चेहरा उदासी से भर गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों परेशान होंगी? दादी धीरे से एक कपड़ा उठाकर अरुणिमा के हाथ साफ करते हुए बोली, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं इस गांव में दाई हूँ। जो औरत उम्मीद से होती है उसकी आंखों में देखकर ही उसकी परेशानियां समझ जाती हूँ, और तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम बहुत परेशान हो। अभी अभी तुमने मुझे दादी कहा था, तो क्या तुम अपनी दादी को नहीं बताओगी कि परेशानी क्या है? अरुणिमा थोड़ी उदास हो गई, लेकिन इस अंधेरे जीवन में उसे अपने मन की बात कहने वाला कोई चाहिए था। सामने बैठी दादी ना तो उसकी सगी थी ना ही कोई रिश्तेदार, वो तो उसे जानती तक नहीं थी, लेकिन फिर भी दादी की बातों से उसे अच्छा लग रहा था। अपना मन हल्का करने के लिए अरुणिमा ने दादी से सब कुछ कह दिया। उसने धीरे से कहा, दादी दरअसल मेरी प्रेगनेंसी के बारे में आस्तिक को नहीं पता है, और आज तक उसने मुझसे पहले ही कह दिया था कि उसे बच्चे पसंद नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बताऊं। दादी मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर मैंने कोई भी डिसीजन लिया तो ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए गलत होगा। आस्तिक मुझे कहीं भी ढूंढ निकालेगा, और यही सोचकर मैं परेशान हूं कि अब मैं क्या करूं। दादी अपना हाथ सर पर मारते हुए कहती हैं, हे भगवान, इतनी सी बात है और इसके लिए तुम अपनी सेहत खराब कर रही हो? देखो अरुणिमा, मैं तुम्हारे पति को तो नहीं जानती, लेकिन मैं मर्द जाति को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मर्द ना होते ही ऐसे हैं, औरत को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ समझ कर ही रखते हैं। सिर्फ शरीर का सुख ही असली सुख नहीं होता है, ये बात एक मर्द को समझने में पूरा जीवन बीत जाता है। और जहाँ तक बात रही बच्चों की, तो कोई इंसान कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, अपने खून को जब अपने सामने देखता है तो उसका पत्थर दिल ज़रूर पिघलता है। जब तक परिणाम नहीं मिल जाता तब तक परीक्षा देने में डर कैसा? और अगर परिणाम के डर से हम परीक्षा ही नहीं देंगे तो जीवन के असली संघर्ष का पता कैसे चलेगा? अरुणिमा हैरानी से दादी की बात सुनती है और कहती है, क्या मतलब दादी, मैं समझी नहीं। आप चाहती हैं कि मैं उसे बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं दादी, मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। जितना मैंने आस्तिक को जाना है वो बहुत गुस्से वाला है, और अगर उसे इस बात का पता चल गया कि उसके मना करने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो वो मुझे जान से मार देगा। और मुझे अपनी परवाह नहीं है दादी, मेरे बच्चे को जान से मार देगा।
अरुणिमा एकदम से डरते हुए कहती है तो रोटी पलटने वाला चमचा सीधे अरुणिमा के हाथ पर मारते हुए दादी कहती हैं, चुप करो, एक माँ होकर तुम अपने बच्चे के लिए ऐसे शब्द कैसे निकाल सकती हो? और किसे कह रही हो कि वो अपने बच्चे को मार देगा? एक पिता को? क्या तुमने कोशिश की कभी उसे ये बताने की या फिर उसे ये समझाने की कि बच्चा जीवन में क्यों जरूरी है और क्यों मारेगा वो अपने बच्चे को? क्योंकि उसने मना किया था तुम्हें माँ बनने के लिए। अरे, तुम क्या कोई दवाई लेकर माँ बनी हो? पूरे संसार में माँ बनने की जो प्रक्रिया है, तुम्हारे पति ने भी तो उसी को ही किया है। तुम्हारे गर्भ में जो है वो उसका अंश है, और अगर इन सब के बावजूद भी एक पुरुष ये कहता है कि उसे अपना अंश नहीं चाहिए, तो मतलब उसका जीवन कठिनाइयों और दर्द से भरा हुआ है। क्या तुमने कभी उसके पास बैठकर समझने की कोशिश की है कि उसके जीवन में क्या है, उसे क्या चाहिए, वो क्यों नहीं चाहता कि जिम्मेदारियां उसके जीवन में दस्तक दें? क्या तुमने अपनी तरफ से कभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसे इस बात का एहसास दिलाया है कि जीवन में अगर तुम्हारा बच्चा आता है तो वो सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी होगी? अरुणिमा दादी की बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है। उसने नामे सिर हिराया क्योंकि उसने कभी भी आस्तिक से इस बारे में बात ही नहीं की थी। उसके लिए तो आस्तिक हमेशा से रूड, एरोगेंट और कोल्ड हार्टेड ही रहा है, जो हमेशा अपनी अकड़ में रहता है, अपनी जिद मानता है और अरुणिमा के शरीर को सिर्फ इस्तेमाल करता है। दादी ने कहा, अगर मेरे अनुभव की बात मानोगी तो एक बार अपने पति के साथ इस रिश्ते को अपना कर देखो। अगर उसे तुम पर यकीन होगा तो उसे अपने आप पर यकीन होगा, और जिस दिन उसे तुम दोनों के रिश्ते पर यकीन होगा ना, उस दिन वो खुद तुमसे कहेगा कि उसे अपना परिवार बढ़ाना है। फ्लैशबैक खत्म। अरुणिमा होश में आती है। उसे दादी की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि आस्तिक के साथ अपने रिश्ते को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करो। लेकिन वो ये कैसे कर सकती है? आस्तिक तो दो दिनों से घर पर ही नहीं ठहरा है, तो ऐसे में उसके साथ बात कैसे करेगी और कैसे उसे बताएगी कि वो अपनी शादी को एक मौका देने की सोच रही है? अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि उसे बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। वो पहचान जाती है कि ये आस्तिक की गाड़ी है। वो जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे पर आती है और देखती है कि आस्तिक फोन पर बात करता हुआ तेजी से घर के अंदर दाखिल होता है और सीधे सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है।
अरुणिमा कुछ सोचती है और उसके बाद अपने कमरे में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से निकलकर सीधे आस्तिक के कमरे में जाती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने आस्तिक सिर्फ बॉक्सर में खड़ा था।